الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی یہ آیات 20 سے لے کے 28 تک یہ پڑھ رہے تھے، تو ان کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، خلاصہ تفسیر پڑھ لی تھی، اور معارف و مسائل ہم نے شروع کر لیے تھے. اور اس میں جو پہلا مسئلہ حضرت نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا تفقد الطیر، کہ تفقدہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اٹینڈنس لینا، ٹھیک ہے، ٹو چیک آفٹر پیپل کہ بھائی آپ کا جو جاننے والا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے نہیں ہے. تو اس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اور اسی کے اوپر کافی لمبی بات ہوئی تھی آخر میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عادت شریفہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے حالات سے باخبر رہنے کا اہتمام فرماتے تھے. جو شخص غیر حاضر ہوتا اگر بیمار ہے تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تیمارداری کرتے اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے لیے تدبیر فرماتے تھے. اب چلیں ہم آپ سے پوچھ کر کے مزید اس کلاس کو آگے چلاتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ سے ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ پتا چلتا ہے، وہ کیا، جس کو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا. تو کہ اگر آپ میں سے ہمیں بتائے، کبھی کبھی کوئز بھی لے لینا چاہیے کلاس میں، اوپن بک کوئز ہوتا ہے ہمارے یہاں. رول آف دی مسجد، تو رول آف دی مسجد تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا اس سے. تو اس میں پھر جو الفاظ تھے وہ کیا تھا، کہ جو شخص غیر حاضر ہوتا. کیا مطلب غیر حاضر ہوتا؟ کہ بھائی کوئی حاضری کی جگہ تھی، جہاں پہ بندہ غیر حاضر ہوگا تب پتا چلے گا نا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ نبی بھی جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے کہ ان کو گھر بیٹھے سب کچھ پتا چل جائے، ٹھیک ہے نا. اور نبی کے پاس بھی کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا کہ جی وہ پرندے آ کر کے بتا رہے ہیں یا فرشتے آ کے بتا رہے ہیں، ایسا کوئی سسٹم آن گوئنگ نہیں تھا. ہاں کبھی کبھی ہوتا بھی تھا کہ جبرائیل امین آ کر کے بتا دیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ ایک اسباب کا، فزیکل مینز کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ ایک مسجد سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اسٹیبلش کری، اور اس مسجد کے اندر جو ہے وہ حاضری کو جو ہے نا وہ لازمی قرار دیا. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ اگر جو نہیں آتے ہیں تو میں ان کے گھر پہ جاؤں اور ان کو آگ لگا دوں، گھروں کو آگ لگا دوں، ٹھیک ہے. کیا مطلب تھا آگ لگانا؟ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہاں پر حاضر کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک حاضر نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے نا یہ سوشل فیبرک جو ہے وہ چل نہیں پائے گا، ایک کلیکٹیو سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے بغیر فنکشن نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے. تو اس بات میں پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا اور آگے چلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مسجد آباد ہونے کا جو تصور آج کل مسلمانوں میں، دیندار مسلمانوں میں، اعمال کرنے والے مسلمانوں میں مسجد کی آبادی کا جو تصور قائم ہو چکا ہے نا، وہ کیا ہے کہ انفرادی طور پر پہنچو، اعمال کرو، اعمال کرو، یعنی نفلیں پڑھو، تلاوتیں کرو، نفلیں پڑھو، تلاوتیں کرو، اس سے مسجد آباد ہو جاتی ہے. وہی مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ پہلے سے ہی آباد ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ سے نکل کر کے ہر ہر مسجد کے اندر پڑ رہی ہوتی ہیں. ساری مسجدیں دنیا کے اندر وہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قیامت کے دن ان سب کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ضم کر دیا جائے گا. ان سب کے جتنے بھی ارتھ کرسٹ کے اوپر جتنی بھی مسجدیں ہیں، تو اس میں ان کا جو کرسٹ کا پورشن ہوگا نا، جیسے پیزا کا کرسٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح مسجد کا جو کرسٹ ہوگا نا، ارتھ کرسٹ جس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، وہ وہاں سے سلائڈ کرتا ہوا، ساری مسجدیں جو ہیں وہ سلائڈ کرتی ہوئی وہ پہنچ جائیں گی کعبۃ اللہ کے اندر، اور سب کی سب جو ہے نا اس کے اندر جا کر کے مرج ہو جائیں گی، اور پھر ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو مسجد کی فکر نہ کریں، وہ پہلے سے آباد ہے، ٹھیک ठीक है, तो मस्जिद की आबादी से यहां पर मुराद, यानी जिससे कि एक मुआशरा आबाद होता है, वो मस्जिद के दरो दीवार से आबाद नहीं होता। मस्जिद के दरो दीवार जो है ना, वो नहीं सोसाइटी में पता करते हैं कि कौन गैर हाजिर है, कौन हाजिर है, किसकी तीमारदारी करनी है, किसकी तीमारदारी नहीं करनी है। बल्कि इसके अंदर जो मस्जिद के अंदर अमीर मस्जिद होता है, अमीर मस्जिद जो कि नायबे रसूल होना चाहिए, सिर्फ कमेटी का इंचार्ज नहीं, कि जी मोहल्ले के अंदर जो है ना वो ज्यादा अमीर इंसान है और ज्यादा उनका असर व रसूख है और बिजनेसमैन है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो अमीर मस्जिद बन के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसी कमेटी मस्जिदें जो है ना, ये तो उल्टा जो है वो बेड़ा गर्क कर रही होती हैं, क्योंकि ऐसी कमेटी मस्जिदों के अंदर जहां पे कमेटी का ही रूल होता है, वहां पर जो इमाम मस्जिद होता है उसकी इंतहा दर्जे की हतक आमेजी की जा रही होती है, उसके साथ जिल्लत आमेज किस्म का बर्ताव किया जा रहा होता है, जो कि नबी का वहां पर वारिस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम का वारिस मौजूद है, उसके साथ जलीलों जैसा सलूक कर रहे होते हैं, है ना। तनख्वाह भी जो है वो बहुत ही घटिया किस्म की देते हैं, और अगर देते भी हैं तो जतलाते हैं, जतलाते हैं कि यू आर आवर पेड सर्वेंट, राइट, आप कमेटी के, आप जो है ना यहाँ के जो जो निजाम चल रहा है आप उसके सर्वेंट हैं, आप यू बेटर बिहेव लाइक आवर सर्वेंट, राइट, यू बेटर बिहेव लाइक आवर सर्वेंट। ठीक है, तो ये वाली मस्जिद जो है ना, इस मस्जिद के अंदर जो है ना अल्लाह ताला की लानतें बरसती होती हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो ये कर रहे होते हैं, मस्जिद के ऊपर नहीं बरसती होती, ऐसे लोगों के ऊपर बरसती होती हैं, क्योंकि नबी के वारिस के साथ ये वाला सलूक कर रहे होते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, सो कॉल्ड दीन का निजाम चला रहे हैं, लेकिन असल में वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं और भी ज्यादा। ठीक है, तो नबी की जो इज्जत है ना, असल चीज ही ये है, सब कुछ तो नबी की वजह से अल्लाह ताला ने किया हुआ है, सारा सारा का सारा दीन ही जो है सर्कल्स अराउंड द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अलैहि सलाम जो है वो जब पर्दा फरमा गए तो नबी के जो वरसा हैं, इट ऑल रिवॉल्व अराउंड देम। हमारे ये बात नहीं समझ में आ रही, हम अमाल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए, कुरान की तिलावतें करवा लो भाई बड़े खुश हो जाते हैं, अजाने दिलवा लो भाई बड़े खुश हैं, सारी दुनिया इस वक्त बड़ी खुश हुई हुई है अजानों से और कुरान की तिलावतों से, हमें अंदाजा नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अल्लाह हमें अक्ल सनी अता फरमाए। आगे फरमाते हैं, यहाँ किताब से पढ़ रहे हैं कि हाकिम को अपनी रईयत की और मशायख को अपने शागिर्दों और मुरीदों की खबरगीरी जरूरी है। ठीक है, हाकिम अपनी रईयत की, यानी जो सियासी तौर पर पॉलिटिकली जिसको अल्लाह ताला ने जमीन का जिम्मेदार बनाया है, हाकिम का मतलब ये नहीं होता कि हुक्म चलाने वाला, बल्कि अल्लाह का हुक्म चलाने वाला, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म को चलवाने वाला अल्लाह की जमीन के अंदर, ठीक है, तो उसको जिम्मेदार बनाया जाता है और उसकी जो है वो गर्दन कयामत के दिन पकड़ी जाएगी। तो हाकिम को अपनी रईयत की और मशायख को अपने शागिर्दों और मुरीदों की। मशायख कौन होते हैं? शेख जो होता है, यहाँ पे शेख से मुराद एक तालीमी निजाम का शेख जो उस्ताद कहलाता है, वो भी इसके अंदर मुराद हो सकता है, लेकिन जो लफ्ज शेख इस्तेमाल किया जाता है वो रूहानी तरबियत के लिए, जो शख्स जो है जिसको जिम्मेदार बनाया जाता है रूहानी तरबियत के लिए, उसके लिए मशायख और शेख का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि फारसी जुबान के अंदर पीर भी कहा जाता है, फारसी जुबान का लफ्ज है ये पीर, और पीर का जो लफ्ज है ये एक बुजुर्ग शख्सियत के लिए लफ्ज पीर, जैसे उर्दू के अंदर पिरहाना साली, बुढ़ापे को पिरहाना साली कहते हैं, वो पीर ही के लफ्ज से निकला, तो पीर का जो लफ्ज है ये फारसी जुबान से उर्दू के अंदर आया, और शेख का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान से उर्दू के अंदर आया। ठीक है, तो उसके लिए भी फिर शागिर्दों और मुरीदों की खबरगीरी जरूरी है। अब इसके तहत लिखते हैं कि आयत मस्कुरा से साबित हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रियाया के हर तबके पर नजर रखते और उनके हालात से इतने बाखबर रहते थे कि हुदहुद जो तुयूर में छोटा और कमजोर भी है और उसकी तादाद भी दुनिया में बनिस्बत दूसरे तुयूर के कम है। ठीक है, यानी ये बहुत ही कम पाया जाने वाला परिंदा है, आपको आपको चिड़ियाएं बेशुमार मिल जाएंगी, कबूतरें, फाख्ताएं, इवन सऊदी अरब जैसे किसी रियाज जैसे शहर के अंदर आपको बेशुमार मिल जाएंगी, लेकिन हमें कब हमें हुदहुद जो है ना वो नजर आता है लेकिन वन से नवा है, बड़े एक जबरदस्त किस्म का एक अलहमदुल्ला पार्क है हमारे घर के करीब, वहां पे जाते हैं ना तो कभी कभी एक हुदहुद जो है वो स्पॉट होता है, लिटरली लाइक स्पॉटिंग अ हुदहुद आप उसको कह सकते हैं। तो वही हजरत ने यहाँ पे लिखा कि बहुत कम तादाद है इसकी, तो वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर से ओझल नहीं हुआ, बल्कि खास हुदहुद के मुतालिक जो सवाल आपने फरमाया उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जुमराए तुयूर में कम तादाद और कमजोर है। ठीक है, कम तादाद में है कमजोर है, तो जैसे कि हम अपने मशायख से अपने हजरत से सुनते हैं कि अल्लाह जो माँ बाप का कमजोर बच्चा होता है ना उसकी नजर उतने कमजोर बच्चों के ऊपर माँ बाप की ज्यादा होती है। ठीक है, और जो माशाल्लाह बहुत ही तेज तेज तर्रार किस्म के और बड़े मजबूत जिस्म के मालिक या मजबूत अकल के मालिक, तो वो तो भाई अपना काम खुद से कर लेंगे, तो कमजोर के ऊपर जो है वो ज्यादा ज्यादा यानी मेहरबानी वाली नजर होती है। तो इसलिए अपनी रईयत के कमजोरों पर नजर रखने का ज्यादा एहतमाम फरमाया। तो इसी मिसाल को बयान करते हुए अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह हम आपके सबसे कमजोर बंदे हैं और हम तो अपना ध्यान रख ही नहीं पा सकते जब तक कि आप हमारी मदद ना करें, तो हमारे साथ आप खुसूसी मेहरबानी वाला मामला फरमा दीजिए। ठीक है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इनके साथ ये मामला था हुदूद पर परिंदे के साथ। तो फरमाते हैं कि सहाबा किराम में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने खिलाफत में इस सुन्नत अंबिया को पूरी तरह जारी किया। रातों को मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिरते थे कि सब लोगों के हालात से बाखबर रहें, जिस शख्स को किसी मुसीबत व तकलीफ में गिरफ्तार पाते उसकी इमदाद फरमाते थे, जिसके बहुत से वाकयात उनकी सीरत में मजकूर हैं। ठीक है, जो मशहूर वाकया कि जी जा रहे थे तो बच्चों के रोने की आवाज आई कि शहर के बाहर एकदम एक ऐसा एक खेमा सा लगा हुआ था, तो फिर वहां पे पता किया तो जी वो उनके पास कुछ खाने पीने के नहीं था। सारा वाक्य आपने यकीनन कई दफा सुना हुआ होगा, और इसके अलावा और भी इस तरह के उनके गश्त के वाक्यात मशहूर हैं। तो वो फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे पर किसी भेड़िए ने किसी बकरी के बच्चे को फाड़ डाला तो उसका भी उम्र से सवाल होगा। फिरात किधर है? फिरात मदीना मुनव्वरा में नहीं है, दरिया फरात ये किधर है? ये इराक में है। इराक और मदीना मुनव्वरा और इराक के दरमियान फासला पता है ना कितना ज्यादा है? राइट, फ्यू थाउजेंड किलोमीटर कुछ होगा, पता नहीं। राइट, तो उमर फारूक, अच्छा नबी अलैहिस्सलाम तो आलमुल गैब नहीं है। राइट, नबी तो आलमुल गैब नहीं है, उमर आलमुल गैब है? या उस जमाने में जो है वो कोई वो क्लोज सर्किट टीवी कैमराज लगाए हुए थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना मस्जिद नबवी के अंदर अपने घर के अंदर? राइट, तो ये क्या, ये कोई फैंटेसी लैंड की बातें कर रहे हैं, कोई अजीब व गरीब किस्म की, यानी ये होता है ना महा शेर व शायरी में जिस तरह की बातें की जाती हैं, राइट, जिसका रियालिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ऐसा ऐसा जुमला क्यों कह रहे हैं? नाउज़ बिल्ला, झूठ तो नहीं बोल सकते, सहाबी रसूल हैं और अशरा मुबशरा हैं। राइट, तो सच बोल रहे हैं ना, शेर व शायरी तो नहीं कर रहे कि फरात के ऊपर भी जो है वो बच्चा, अगर किसी बकरी का बच्चा जो है फाड़ा फाड़ डाला गया किसी भेड़िए ने, तो उम्र से उसका सवाल होगा। तो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इस बात का? आप में से अगर कोई बताए, राइट, क्या कोई यानी फैंटास्टिक क्लेम्स किस्म के, फैंटेसी लैंड के क्लेम्स कर रहे हैं खाली बैठ कर, करना कराना कुछ नहीं है, जैसे हमारे यहाँ रोटी कपड़ा और मकान, राइट, मिलना देना दिलाना किसी को कुछ नहीं है, करना कराना कुछ नहीं है और तकरीरें करते फिरते हैं सारी जगह पे। ठीक है, तो उमर फारूक भी ऐसे करते थे रजी अल्लाह ताला अन, या क्या हुकूमत वहां तक पहुंच गई थी? तो हुकूमत पहुंच गई थी ना, उमर फारूक तो नहीं पहुंचे थे ना। ठीक, उमर फारूक तो वहां पे नहीं बैठ करके देख रहे होते थे, तो कैसे, हाउ विल ही मेक श्योर कि जी फरात के किनारे के ऊपर क्या हो रहा है? ठीक है, सादा सा जवाब है इसका कि उमर फारूक खुद हर जगह नहीं पहुंचे होते थे, लेकिन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया था कि जिसमें के हर इलाके के जो गवर्नर्स होते थे वो उमर फारूक को रिपोर्ट किया करते थे, वो उनको उनके जिम्मेदार होते थे। ठीक है, कि अपने खलीफा को रिपोर्ट करेंगे, और गवर्नर भी हर जगह नहीं पहुंच सकता, गवर्नर के भी अच्छा खासा एक इलाका होता है। ठीक है, गवर्नर का भी एक अच्छा खासा इलाका होता है जिसके अंदर गवर्नर भी हर जगह खुद नहीं पहुंच सकता, तो गवर्नर के भी रिपोर्टीज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो है गवर्नर साहब हैं, फिर गवर्नर साहब को जो है वो हर शहर का मेयर है। ठीक है, मेयर के जो है वो फिर वो डिस्ट्रिक्ट के मेयर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट के मेयर जो है वो मोहल्ले लेवल के ऊपर। राइट, तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नर्स गवर्नेंस जो है वो उमर फारूक तारन ने भी बनाया हुआ था, आज भी बना हुआ है, बस फर्क सिर्फ ये है कि आज फंक्शन नहीं कर रहा, उस वक्त फंक्शन कर रहा होता था। ठीक है, तो इस किस्म का एक फंक्शनल जो 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 सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है ना, तो उससे फिर आप दुनिया के किसी को गोशे के अंदर भी आपके रियाया बैठी हुई है तो आपको उनकी खबरें मिल रही होती हैं, और अगर खबरें नहीं भी मिल रही तो लोकली एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा काम कर रही है ना। ठीक है, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इफेक्टिव और इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो बादशाह की खबर हुए बगैर भी वो अपना काम ठीक ठीक कर रही है। उसको पता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी शिकायत हो जाएगी ऊपर। राइट, और जब हमारी शिकायत हो जाएगी ना, फिर हमें छोड़ा नहीं जाएगा, फिर हमसे जो है ना वो अच्छी तरीके से हिसाब दिया जाएगा, और अगर हम कसूरवार साबित हो गए तो फिर हमें टांग दिया जाएगा, है ना, हमारे यहाँ जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है टांग दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये है राइट, इसके बगैर जो है ना ये खाली बातूनी हरकतें नहीं है, बोलने की बातें नहीं है ना कि ये ऐसा हो जाएगा और उमर को जो है वो सवाल कर दिया जाएगा वगैरह, ठीक है। ये वो नहीं है कि रूहानी तवज्जोहात जो है वो दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है, नहीं, दिस इज अ फिजिकल सिस्टम, ठीक है, ये असबाब के तहत जो है ना ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना वो इंसान की नीयत और इंसान की कोशिश देखी जाती है, जिसको कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बेस्ट एफर्ट बेसिस है ना, बेस्ट एफर्ट आप जितनी अपनी कर सकते हैं उतना तो करके दिखाएं ना, ठीक है, बाकी रिजल्ट्स तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं, आगे ये बात भी आ रही है इंशाल्लाह अगले पेज के ऊपर, ठीक है, कि आप अपनी नीयत जो है वो अच्छी रखें, अल्लाह ताला आपकी नीयत देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आपके पास जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए थे उन वसाइल को आप जो है वो इस नीयत की एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बेस्ट एफर्ट, ठीक है। बाकी आप कोई ना तो आपके पास कोई ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम है कि आपको जो है वो लोगों के जाहिरी हालात सारे के सारे नजर आते रहे कि किसके साथ क्या हो रहा है, और ना आपके पास कोई रूहानी सर्वेलेंस सिस्टम है, ठीक है, कि आपको लोगों के दिनों के हालात भी सारे के सारे नजर आ रहे हैं कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है और कौन जो है उसके ऊपर क्या दिल किया, किसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, किसके दिल पे क्या गुजर रही है, ऐसा कोई सर्वेलेंस सिस्टम अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, सिवाय अपने पास रखा है, एक बनाया है जो अल्लाह के अपने पास है, ठीक है ना, वो सिस्टम जो है ना वो अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दिया, हत्ता कि अपने नबियों को भी नहीं दिया, जब नबियों को नहीं दिया तो फिर किसको दिया होगा, ठीक है, कि फलाने के दिल में क्या गुजर रही है, फलाने के दिल में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो जाहिरी तौर पर जितने असबाब अल्लाह ताला ने दिए हैं उन असबाब को इंसान इस्तेमाल करता है, उस जमाने में असबाब जो है वो कम थे, आज जो है वो असबाब बे इंतहा हो चुके हैं, तो इस तरीके से जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कैमरे लगे हुए हैं जी पूरी की पूरी बिल्डिंग के एक एक जगह पे, एक एक कॉरिडोर, एक एक जो है वो राहदारी के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, और एक सेंट्रल रूम के अंदर बैठ करके सब देख रहे होते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, ताकि मस्जिदों के अंदर भी इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो जो आपके पास है अवेलेबल उसको तो इस्तेमाल करें, बाकी अल्लाह ताला की मदद मांगे, अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं जितना चाहते हैं। तो आगे फरमाते हैं कि ये थे वो उसूल जहांबानी व हुक्मरानी, जहां बानी व हुक्मरानी वही यानी जहान को जो है वो संभालने का जो उसूल है जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिखाए और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उनको अमलन जारी करके दिखलाया, और जिसके नतीजे में पूरी मुस्लिम व गैर मुस्लिम रियाया अमन व इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करती थी, और उनके बाद जमीन और आसमान ने ऐसे अदल व इंसाफ और आम दुनिया के अमन व सुकून और इत्मीनान का ये मरकज का ये मंजर नहीं देखा। तो हजरत ने ये जो जुमला लिखा है तो ये जुमला जो है विद एक्सेप्शंस है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो है ना वो इस्तिस्ना मौजूद हैं कि सहाबा कराम के बाद दुनिया ने ऐसा सिस्टम नहीं देखा, ये एक जनरल टर्म है, जनरल सेंटेंस है, लेकिन देखा, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े पॉकेट्स के अंदर देखा, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुदरतन चंद दिन पहले, ख्याल में 2 दिन पहले की बात है, ये आजिज जो है वो घर में बात कर रहा था, हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, तो एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हजरत इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सहाबाए कराम के दौर के बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, और उनके दौर के बाद ये हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से वो यानी इंसाफ की जो है वो अमलदारी होती थी हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, ठीक है, नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद ही काफी अरसे तक जो है वो उल्टी सीधी हरकतें होती रही, फिर जो है वो सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उन्हीं के फुटस्टेप्स के ऊपर फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह के जो चीदा चीदा दौर जो है ना वो गुजरे हैं जिनमें के सहाबा कराम की यादें जो है वो ताजा हो जाती थी, और उस बाद के अदवार के अंदर भी ऐसे कुछ हजरात जो है वो गुजरे हैं, इवन इंडिया के अंदर गुजरे हैं, अफगानिस्तान के अंदर हजरत यानी बहुत बड़े बड़े इस किस्म के अकाबरीन गुजरे हैं जिन्होंने अपने जमाने में अपने इलाकों में ऐसे निजाम को नाफिज करके दिखाया। हमारे करीबी जमाने में भी पड़ोस के मुल्क के अंदर अलहम्दुलिल्लाह ऐसा निजाम था कुछ अरसे तक, तो कम अज कम। और फिर ये आखिरी दौर के अंदर जब इमाम मेहदी होंगे और इमाम मेहदी के इंतकाल फरमा जाने के बाद ईसा अलैहि सलाम होंगे, तो उस वक्त फिर से ऐसा ही दौर दुनिया के अंदर होगा। अच्छा, मालिया ला अरल हुदहुदा अम कान मिन अल गाइबीन, कि व्हाट इज विद मी दैट आई डोंट सी, है ना। कुछ पहले भी ये आज इस तरह की बात कर चुका है कि लफ्जी तर्जुमा अगर अंग्रेजी में अरबी का किया जाए ना तो कभी कभी ज्यादा आसानी हो जाती है, और उर्दू के अंदर भी खैर होती है ऑफकोर्स, लेकिन हमारी इंग्लू की वजह से मसले मसाए। तो मान लिया मुझे मुझे क्या हुआ कि ला अरल हुदूदा, कि मैं हुदूद को नहीं देखता, या वो गायब लोगों में से है, एबसेंटीज में से है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया कि मुझे क्या हो गया कि मैं हुदूद को मजमे में नहीं देखता। अब इसके तहत हजरत ने एक एक यानी उनवान बांधा, अपने नफ्स का मुहासबा करना। ठीक है, अब ये भी बहुत 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 बल्कि सबसे अहम हमारे लिए अगर कहा जाए तो ये टॉपिक है, अपने नफ्स का मुहासबा करना, यानी अपने नफ्स का जो है ना वो हिसाब लेना। यहां मौका तो ये फरमाने का था कि हुदहुद को क्या हो गया, राइट, कि वो मजमे में हाजिर नहीं। ठीक है, हुदहुद को क्या हो गया कि वो मजमे में हाजिर नहीं। उनवान शायद इसलिए बदला, यानी सुलमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हुदूद क्यों हाजिर नहीं है, सुलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा लिया व्हाट इज विद मी, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदूद को नहीं देखता, राइट। तो उसलिए लिख रहे हैं कि उनवान शायद इसलिए बदला कि हुदहुद और तमाम तयूर का मुसख्खर होना हक तआला का एक इनाम खास था। ठीक है, ये सुलमान अलैहिस्सलाम ने कोई डंडे मार मार कर थोड़ी हुदूद को अपना गुलाम बनाया था, अपना दरबारी बनाया था, राइट। जिन्नों को सुलमान अलैहिस्सलाम ने कोई कोई लश्कर कशी करके जिन्नों को जो है मुसफर किया था, राइट। वो तो चंद इंसानों को तो ठीक है जी, आपने जो है वो हमला करके जो है ना किसी इलाके को आपने कॉन्कर कर लिया, अब वहां के लोग जो है ना वो आपके खादिम हो गए, आपके गुलाम हो गए। लेकिन सुलमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत तो ऐसी यूनिक बादशाहत थी कि जिसमें सुलमान अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट कोई अमल दखल था ही नहीं, राइट। ये तो अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी ना, जिसको कहते हैं ना ये कस्बी नहीं थी, ये वहबी थी। कस्बी कहते हैं अपनी मेहनत से कोई चीज हासिल करना, वो भी अल्लाह ही ने दी होती है, लेकिन इंसान की मेहनत भी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। जाहिरी सबब बन जाता है इंसान की मेहनत, लेकिन देता तो अल्लाह ही है। और एक दूसरी किस्म की ग्रांट होती है जिसके अंदर आपकी मेहनत बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती, बस अल्लाह ताला ने आपको दे दिया कोई चीज, ठीक है। जैसे कि हम सारे के सारे आंखें और कान और हाथ पैर और सब कुछ जो है ना वो फ्री में लेकर के आए अल्लाह ताला की तरफ से, राइट। हमने कोई मेहनत करी थी इन सब चीजों के लिए, तो इसको वह भी कहते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो ये बादशाहत थी ना, ये वहबी बादशाहत थी, तो ये तो अल्लाह ताला के एक खसूसी इनाम था ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है। हुदहुद की गैर हाजिरी पर इब्तिदा में ये खौफ दिल में पैदा हुआ कि शायद मेरे किसी कसूर से इस नेमत में कमी आई है, मैंने कोई कसूर किया कि अल्लाह ताला की खसूसी जो नेमत मेरे पास थी ना कि हुदहुद जैसा परिंदा भी मेरे पास जो है वो खड़ा होता था, तो मेरा कोई कसूर होगा, मैंने कोई गलती करी होगी, ठीक है। कि एक सिन्फ तुयूर की यानी हुदहुद गायब हो गया, एक सिन्फ तुयूर की यानी हुदहुद गायब हो गया, इसलिए अपने नफ्स से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ। देखें हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ना, ये सिर्फ एक कुरान पढ़ के उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन बयान करने वाले नहीं है, बल्कि ये और सिर्फ आलम दीन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के वलियों में से हैं। अभी इनके बेटे, बड़े बेटे का जो इंतकाल हुआ है, तो मुफ्ती रफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी करोड़ों मगफरत फरमाए, ठीक है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, ये हकीकी अल्लाह वालों में से थे, हमें इसके ऊपर किसी किस्म को कोई शक नहीं है, ठीक है। तो चूंकि इनकी अपनी सोच ऐसी है, देखिए अल्लाह वालों की सोच ऐसी ही होती है, यही लोग बनते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह वाले जो है वो हवा में उड़ के नहीं बन जाते, पानी पे चल के नहीं बन जाते, बल्कि जिनकी सोच ऐसी बन जाती है ना, अपना अपना मुहासबा करने वाली, वही अल्लाह वाले बन जाते हैं। तो चूंकि इनकी अपनी सोच ऐसी है ना, इस वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज को ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही, अपने बारे में क्यों कही, क्योंकि अल्लाह की एक नेमत जो है ना वो उनको गायब नजर आई, उनको फौरन अपने ऊपर गुमान गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, राइट। कि अल्लाह आपने कोई गलती नहीं करी कि जो है ना आपने जो मुझे नेमतें दी थी, तो आज जो है ना नाउज़ बिल्ला आपसे कोई कोई गलती हो गई, आपने एक नेमत जो है ना वो गायब कर दी, या उस नेमत को प्रोवाइड करना छोड़ दिया आज मुझे, नहीं, यू आर प्योर, आप बिल्कुल पाक हैं, सुभान का, आप पाक हैं ऐसी गलतियों से। आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते, करते ही नहीं आप ऐसी गलतियां, ये नहीं कि कर सकते नहीं है, करते नहीं आप ऐसी गलतियां, ठीक है ना, पाक हैं आप इनसे, ठीक है ना, आप जो चाहें कर सकते हैं लेकिन आप ऐसी गलतियां करते नहीं है, आपकी शान के खिलाफ है। इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन, मैंने ही यकीनन गलती करी है जिसकी वजह से मेरे साथ कोई मुसीबत हुई हुई है, ठीक है ना। जो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए थे तो यही तो उन्होंने, ठीक है, तो अल्लाह वाले ऐसे ही सोचते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही सोचा, आदम अलैहिस्सलाम ने भी और उनकी बेगम हव्वा ने भी ऐसे ही सोचा, और सारे अल्लाह वाले ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने भी यही सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो गया कि अल्लाह ताला की इस नेमत में कमी आ गई। जैसा कि मशायखे सूफिया का मामूल है कि जब उनको किसी नेमत में कमी आए या कोई तकलीफ व परेशानी लाहक हो तो वो उसके इजाले के लिए मादी असबाब की तरफ तवज्जो करने से पहले अपने नफ्स का मुहासबा करते थे, ठीक है। यानी ये नहीं कह रहे कि मादी असबाब की तरफ तवज्जो ही नहीं करें कि जी मैं अब इसको जो एक मुसीबत आई भी है तो उसको हटाने के लिए कोई कोई मीन्स इख्तियार करूं, कोई इसके लिए अकल अकल लड़ाऊं, कोई उसके लिए जो है लोगों से मशवरा करूं, नहीं करते थे, लेकिन सेकेंडरीली बाद में करते थे, सबसे पहले जो है ना वो अपना मुहासबा करते थे कि ये जो मुसीबत आई है ये मेरे किस गुनाह की वजह से आई है। इसी वजह से अक्सर हजरात जो है वो पूछते हैं, आप में से कई कई के साथ ऐसे बात हो चुकी है कि जी फजर नहीं मिलती, फजर कजा हो जाती है, तो उनको हम यही जवाब देते हैं कि हमारे मशाइख के यहाँ ये बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह लिखी हुई है कि फजर जो इंसान की कजा होती है ना, अगर आदतन कजा हो रही है, कभी एक आध दफा कजा हो जाए तो ये वजह नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी की ज्यादा कजा होनी शुरू हो जाए ना, हफ्ते में दो, ठीक है, या हर हफ्ते में एक, कम से कम एक कजा हो रही है फजर, लाजमन इसकी वजह ये होती है कि दिन के अंदर वो कोई ऐसा गुनाह कर रहा है कि जिससे कि वो तौबा नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, इसी वजह से अल्लाह ताला उसको फजर से महरूम कर रहे हैं। क्योंकि फजर जो है ना, ये जो है ना, ये नफली इबादत नहीं है, तहज्जुद नफली इबादत है। हाँ, अल्लाह वाले तो खैर तहज्जुद के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन तहज्जुद एक नफली इबादत है, वो अगर किसी की छूट भी जाए ना तो उसके अंदर खैर यानी कोई और वजह भी हो सकती है उसकी, ठीक है, लेकिन फर्ज इबादतों के साथ ऐसा नहीं होता, फर्ज तो फर्ज है भाई, तो ये तो लाजमन गुना की वजह से है, ठीक है। तो अगर किसी का ऐसा मामला है तो उसको अपने दिन के अमाल के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है ना अल्लाह ताला फजर से महरूम कर रहे हैं, ठीक है। जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी तो अगर जिंदगी में एक कजा हो जाए ना तो उनके तो जैसे ही उठ करके पता चलता है अच्छा जी टाइम निकल गया, उधर ही उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि क्या किया था मैंने कल जिसकी वजह से मुझे आज की फजर से जो है महरूम कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ फजर की नमाज के साथ नहीं है बल्कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि असल है हमारे दीन के अंदर इंसान की इसलाह के लिए कि अपने नफ्स का मुहासबा करे। देखें, पहले भी बात हो चुकी है, कई दफा बल्कि हो चुकी है, रिसेंटली भी हुई है कि देखें अगर हम अपने नफ्स का मुहासबा नहीं कर रहे होते हैं ना तो बेसिकली हम जो है ना वो नाउज बिल्ला इल्जाम अल्लाह को दे रहे होते हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी नाउज बिल्ला, या अल्लाह ताला डज नॉट नो हाउ टू मैनेज हिज क्रिएशन, समथिंग लाइक दैट, है ना, जिसकी वजह से जो है ना मेरे साथ ये मुसीबत हुई हुई है, ठीक है। अब जो बेदीन लोग होते हैं या दुनियादार लोग होते हैं वो कभी कह भी देते हैं इस तरह की बात अल्लाह ताला के बारे में, मुंह से निकल भी जाती है, लेकिन जो दीनदार लोग होते हैं ना, लेकिन उनको मुहासबे वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता, है वैसे दीनदार, वो कहते नहीं है मुंह से ऐसी बातें, क्योंकि उनको पता है ऐसी बातें कह दी ना तो फिर तो पता नहीं कहीं काफिर ना हो जाऊं या लोग जो है वो मुझे मलामत ना करना शुरू हो, वो दाढ़ी रखी हुई है और तो ऐसी बातें कर रहे अल्लाह के बारे में, राइट। तो मुंह से निकालते नहीं है लेकिन ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी जो है वो एटीट्यूड दिखाते हैं कि जैसे कि कसूर अल्लाह ही का है, ठीक है, दूसरे बंदों को भी तो अगर कसूरवार ठहराना होता है ना तो फिर वो भी तो दरअसल अल्लाह के ऊपर ही पलट रहा होता है ना। खैर, ये बड़ी तफसीली डिस्कशन है, पहले भी कई दफा हो चुकी है, तो इस वजह से हम आगे चलते हैं कि मादी असबाब की तरफ तवज्जो करने से पहले अपने नफ्स का मुहासबा करते थे कि हमसे अल्लाह ताला के हक पे शुक्र में कौन सी कोताही हुई कि जिसके सबब ये नेमत हमसे ले ली गई, ठीक है। इसी वजह से जब नेमतें उनके पास होती है ना, तो उनकी दुआओं के अंदर ये दुआ शामिल होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी ना इन्ना नाउजु बिका मिन जवाले नेमतिक, कि ए अल्लाह मैं आपसे आपकी पनाह मांगता हूं नेमत के छिन जाने से। वो नेमत को अपना राइट नहीं समझ रहे होते, वो ये नहीं समझ रहे होते कि आई डिजर्व दिस नेमत। नो, वी डोंट डिजर्व एनी नेमत, नॉट ए सिंगल नेमत दैट वी हैव, वी डोंट डिजर्व इट। ठीक है, तो इस वजह से हर वक्त उनके सर के ऊपर ये तलवार लटक रही होती है, जवाले नेमत ना हो जाए कहीं, यानी नेमत जायल ना हो जाए, नेमत दूर ना हो जाए हमसे, नेमत छिन ना जाए हमसे। ठीक है, हमारे मशाइख फरमाते हैं, हजरत अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैहि की गालिबन हिकमत हमने अपने हजरत के बयान के अंदर सुनी, कि शुक्र जब इंसान करता है ना, तो वो नेमतों को जैसे कि बांध लेता है अपने पास, खूंटे से बांधना होता है ना, कि अब आपने जो है वो ऊंट को जो है वो खूंटे से बांध दिया, तो अब ऊंट भाग भाग नहीं सकता आपके पास से, ठीक है ना, और अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा आपके पास से। ठीक है, उसी तरीके से नेमतें जो है ना, उनको खूंटे से अगर बांधना है ना, तो उसका तरीका ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। ठीक है, और अगर अल्लाह का शुक्र नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव अलाउड योर नेमत टू बी टेकन अवे। ठीक है ना, वो अब चली जाएगी। अब इसके ऊपर शुक्र जो है वो हमारे यहाँ जो है वो दीनदार दीन के माशाल्लाह हवाएं चल गई हैं। ठीक है, तो अब क्या मतलब हो गया इसका, दीन की हवाएं चल गई हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा होता है, राइट। रमजान ट्रांसमिशन के अंदर जो आधी नंगी खातून बैठी होती हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही होती हैं। ठीक है, तो मशाइख से हमने सुना कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया उसने शुक्र अदा कर दिया, तो वो जो आंटी बैठी हुई हैं, बाल भी खुले हुए हैं, हाथ काग भी खुले हुए हैं, और जो उनके साथ बराबर में अंकल बैठे हुए हैं जो कि उनके साथ हंसी मजाक और हर किस्म की हरकतें कर रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, आंटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमने हजरत जी से सुना था कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। तो रमजान ट्रांसमिशन के अंदर अंकल आंटी दोनों शाकिरीन में शामिल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि शुक्र का मतलब ये नहीं है कि आप जुबान से कोई जुमला कह दें और अल्लाह के हुक्मों की आप ऐसी की तैसी कर रहे हो। अगर आप अल्लाह के हुक्मों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं और जुबान से आप हजार मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, इसको अल्लाह का शुक्र नहीं कहते, ये अल्लाह का शुक्र नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र जो है ना, ये अल्लाह के हुक्मों की अतात के साथ वाबस्ता है, बंदा हुआ है ये अल्लाह के हुक्मों के अतात के साथ। ठीक है, तो शुक्र का असल मफहूम जो है वो अल्लाह के हुक्मों की अतात है, या कम अज कम अतात करने की कोशिश है। हाँ, कर तो हम में कोई भी नहीं कर रहा, कर सकता नहीं है, हमारी औकात ही क्या और हमारी हिम्मत ही क्या कि हम अल्लाह के साथ सारे हुक्मों की अतात कर सकें। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि जी नहीं, ये तो कोई है ही नहीं, ऐसा तो कोई हुक्म ही नहीं है, तो खाली मौलवियों ने बनाया हुआ है, ये ऐसे है वैसे है, और मैं तो अपनी जो मुझे समझ में आता है मैं तो बस वही करूंगी या वही करूंगा, ये बिल्कुल भी शुक्र नहीं है, बिल्कुल शुक्र के मुनाफी है इस किस्म का एटीट्यूड। तो अल्लाह की नेमतों को अपने पास बांधे रखने का तरीका जो है वो अल्लाह ताला का हकीकी शुक्र अदा करना है। हाँ, अल्लाह के हुक्मों के अताअत वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और फिर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो सोने यानी फिर तो नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर। ठीक है, तो कुर्तुबी ने इस जगह बहवाला इब्ने अरबी इन बुजुर्गों का ये हाल नकल किया है। ठीक है, यानी हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने जो उनकी तफसील लिखी, तो ये भी बता दिया कि मैंने वहां से इसको नकल किया है। एक चीज और पढ़ के फिर उसके बाद जो तौबा कलमात का आप लोगों से वादा किया हुआ था, कुछ दो हजरात से कहा था, तो आगे फरमाते हैं कि इजा फकदू आमालहुम तफकदू आमालहुम। ठीक है, कि आमालहुम तफकदू आमालहुम, यही होना चाहिए शायद, कि यानी इन हजरात को जब अपनी मुराद में कामयाबी नहीं होती तो ये अपने आमाल का मुहासबा करते हैं कि हमसे क्या कसूर सरजद हुआ है। ठीक है, यानी जब इनकी डिजायर्स पूरी नहीं होती ना, जब इनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, आमाल का जो लफ्ज है ये अमल से निकला, अमल का तर्जुमा जो है वो होप से अंग्रेजी में कर सकते हैं और उर्दू में उम्मीदों से करते हैं, यानी जो भी आपकी एक दुनिया दुनिया के अंदर आपका एक तमन्ना होती है कि भाई मैं ऐसा कर लूं या मेरे साथ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो जब वो तमन्ना पूरी नहीं होती है ना, भाई तमन्ना पूरी किसने करनी है, अल्लाह ने करनी है ना। ठीक है, हम तो दिल के अंदर एक सोच रखते हैं, एक तमन्ना रखते हैं, अल्लाह ने उनकी तमन्ना पूरी नहीं करी, तो ऐसे जो लोग होते हैं तो फिर फौरन अपने अमाल की तरफ देखते हैं कि जी हमसे क्या कसूर सजद हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो 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 चाहत है उसको पूरा नहीं किया। ठीक है। अब ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर वो सही मानों में अपने अपना मुहासबा करके फिर उसके बाद उनको कोई ऐसा गुनाह नजर नहीं आ रहा होता है, ठीक है, या उनको किसी ने जैसे उनके शेख ने एश्योर कर दिया कि नहीं आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि जिसकी वजह से आपको सजा मिल रही है, कि आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही, ठीक है भाई। देखें हर बंदे को यानी किसी बंदे को अपने गुनाह नजर नहीं आते ना, एक आम जुमला है। तो जो भी अपने अमाल को देखेगा उसको गुनाह नहीं नजर आएंगे, तो फिर वो क्या क्या करेगा फिर उसके बाद, उसको तो गुनाह ही नजर नहीं आ रहे। तो इस वजह से ना शुरू में जब इंसान की इस्लाह नहीं हुई होती है तो उसको जो है वो किसी आईने के पास जाना होता है, ठीक है। खुद से वो अपने अमाल नहीं देख सकता, अपने गुनाहों को नहीं पहचान पाता, वो किसी आईने के पास जाए तो फिर उसको अपने गुनाहों का पता चलता है, ठीक है। तो ये बंदा जो है वो अपने आईने के पास चला गया, उसको पता चल गया कि जी वाकई कोई ऐसा गुनाह इसकी सबब नहीं बन रहा है, तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना होता है, ठीक है, कि भाई हाँ भाई ठीक है गलती नहीं मिली, या अगर गलती मिली भी तो मैंने उससे तौबा कर ली, जब तौबा कर ली सच्ची तौबा कर ली अल्लाह ने माफ कर दिया, अभी भी जो है वो मेरी मुराद पूरी नहीं हो रही, तो भाई इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का यही मंशा है कि ये वाली मेरी मुराद जो है ना वो पूरी नहीं हो और इसी के अंदर मेरे लिए खैर होगी, ठीक है। तो ये उसूल की बात हजरत ने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, इसके बाद इस इब्तदाई मुहासबा नफ्स और गौर फिक्र के बाद फरमाया अम काना मिनल गायबीन, कि या वो गायबीन में से, तो इस जगह लफ्ज अम बमानी बल है, मानी ये है कि ये बात नहीं कि हुदहुद के देखने में मेरी नजर ने खता की, बल्कि वो हाजिर ही नहीं है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना बल्कि वो हाजिर ही नहीं है, तो मेरी कोई गलती नहीं हुई इसमें देखने में, बल्कि वो हाजिर ही नहीं है। तयूर में से हुदहुद की तख्सीस की वजह और एक अहम इबरत, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, आप पढ़ लीजिएगा या इंशाल्लाह अगली क्लास तक आप इंतजार कर लें, जब तक जो है ना वो आप में से एक दो हजरात के साथ तौबा कलमात पढ़ाने का वादा किया था, तो वो हम पढ़ लेते हैं। एक कमेंट यहाँ पे किसी ने लिखा था, क्या ये पड़ोस के मुल्क में इमाराती इस्लाम के बारे में भी ऐसा गुमान कर सकते हैं? पता नहीं भैया, हाल का मैं नहीं पता, माजी का तो कम से कम पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अजान और तिलावत की रिसेंट वीडियोस शेयर कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, अलॉन्ग विद दावा एंड अदर स्टफ गोइंग ऑन इन। अच्छा, मरवाएंगे आप जो लगता है। अल्लाह रहम करे, बस अकल अपने, वो वही बात हुई आप आपके सामने भी हुई है कि जरा अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लें, ठीक है ना, इतने ही आज इसका आएगा आपसे, अपने माइक्रो कोड को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने रिलीज वर्जन को, जो आपके अंदर चल रहा है ना, फिट हुआ है ना, सॉफ्टवेयर होता है ना हर बंदे के अंदर, समझे, हर बंदे में एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लें, ठीक है, पुराने वर्जन के साथ जब दुनिया को देखेंगे ना तो कुछ और ही नजर आएगा, ठीक है, और अपग्रेड करेंगे ना तो फिर उसके बाद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। खलीफा का मतलब क्या है, किसको खलीफा कहते हैं? खलीफा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, नायब, किसी का रिप्रेजेंटेटिव ना, कोई असल जब मौजूद नहीं होती है तो फिर उसका खलीफा, जैसे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए ना, ठीक है, दुनिया के जमीन के ऊपर से नबी अलैहिस्सलाम जमीन के नीचे तशरीफ ले गए, ठीक है, तो अब नबी अलैहिस्सलाम का के खलीफा जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु बने, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव थे नबी अलैहिस्सलाम के। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी खलीफा थे। नबी अलैहिस्सलाम किसके खलीफा थे? नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा थे, ठीक है, जो नबी होता है वो अल्लाह का खलीफा होता है, और फिर नबी के बाद जो है वो उसके जो तरबियत याफ्ता होते हैं वो फिर उसके खलीफा बनते हैं। अच्छा, टाइम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तो तौबा के कलमात जो है ना वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मशायख के पास जब कोई आता है कि भाई मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ और मैं नेक बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हुए उनके साथ जो है वो तौबा करते हैं, ठीक है। तौबा के कलमात हमारे मशायख ने कुछ इसके लिए वजह कर लिए हैं, तो उनको साथ मिलके पढ़ लेते हैं। दिल की नीयत और इरादा जो होता है वो अल्लाह ताला को पता होता है कि किस इरादे से पढ़ रहे हैं, तो इस अमल को जो है वो तौबा कलमात पढ़ना कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बता देते हैं कि आप चंद अमाल करने शुरू कर दें और राबते में रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि आपकी जिंदगी को बदलना आपके लिए आसान होगा। तो तौबा कलमात को अपने दिल में तौबा की नीयत के साथ हम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु محمد رسول الله آمنت بالله व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौम अल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअसि बाद अल मौत। आमंतु बिल्लाही कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। ठीक है, इन्हीं को तौबा ए कलमात हमारे मशाइख कहते हैं। यही जो है वो हमारे नक्शबंदिया सिलसिला के मशाइख में भी राइज हैं और दूसरे चिश्तिया सिलसिले के मशाइख में भी हमने यही कलमात सुने उनको भी पढ़ाते हुए। तो मकसद इसका ये होता है कि नेक अमाल बाद में होंगे, पहले जो है वो गुनाहों से हम तौबा कर लें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लें। फिर जो मशाइख मामूल बताते हैं वो फिर जिन्होंने कहा था तो उनको हम अलग से व्हाट्सएप के बता देंगे, क्योंकि क्लास का टाइम अब खत्म हो चुका है। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।